also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kaun aaya, saath Baba bhi aaya. देखो कौन आया साथ बाबा भी आया शिवा एंड बाबा टुगेदर
यू आर द ओशन ऑफ लव यू आर द ओशन ऑफ लव
शांति। रामू बहुत गरीब था, बचपन में ही माँ बाप को चले गए। तो अकेला होने के कारण, गांव में अकेला होने के कारण जाके जंगल में जाया करता था। जंगल में जाता था तो एक आम का पेड़ के साथ उसकी बहुत दोस्ती हो गई और उसी आम के पेड़ के फल खाता था और नीचे सो जाता था। देखते देखते कुछ समय बीता और फिर वो जंगल लौटे ही नहीं। पेड़ इंतजार करता रहा कि रामू आएगा और खेलेगा हमारे साथ। कुछ समय बीतने के बाद जब रामू थोड़ा बड़ा हो गया और एक दिन अचानक जंगल में उसी पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ देख के और पेड़ बोला कि रामू आ गए, अब मेरे साथ खेलो, फल खाओ। तो रामू बड़ा उदास और पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया और तो पेड़ ने पूछा क्यों उदास हो। तो रामू ने कहा कि मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए और पैसे नहीं है। तो पेड़ ने बोला कि तो मेरे फल तोड़ लो और बाजार में बेच के इससे जो पैसे मिले उससे अपनी इच्छा पूरी करना। तो उसने ऐसा ही किया और फिर वापस नहीं लौटा पेड़ के पास। कुछ समय बाद और बीता, फिर रामू गया, फिर उदास था। पेड़ ने फिर पूछा कि अब क्यों उदास हो। बोले घर गृहस्थी हो गई, रहने के लिए घर नहीं है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी टहनियाँ काट लो और उससे जाके लकड़ियाँ ले जाके घर बना लेना। फिर खुश हो गया रामू और काटा उसको ले गया। अभी फिर नहीं लौटा वो। कुछ समय बीत जाने के बाद जब और थोड़ा बुजुर्ग हो गया तो फिर लौट के गया तो पेड़ फिर खुश हुआ और रामू से बोला चलो खेलो, अब तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई, अब खेलो मेरे साथ। तो बोला अभी कहाँ, अभी तो समस्याएं आना शुरू हुई हैं। और भी परेशान हो गया हूँ मैं, अभी मुझे ना नाव का बिहार करनी है, नौकायान, तो मुझे उसके लिए नाव चाहिए। तो पेड़ बोलता है, तो मैं तो कुछ तुमको नाव दे नहीं सकता, लेकिन तुम मेरा तना काट लो, उससे जाके नाव बना लो और नाव का बिहार कराओ। नाव का बिहार में निकल गया रामू, बहुत समय बाद, कई वर्षों के बाद फिर लौटा। अब तो पेड़ के पास बचा ही नहीं था जड़ के अलावा, और रामू भी बुजुर्ग हो चुका था। फिर भी जड़ ने कहा कि रामू, अब तो तुम्हारे साथ मैं खेल नहीं सकता, एक जड़ ही है, यहाँ बैठ के विश्राम कर लो। तो रामू और पेड़ इतना कहने के बाद रोने लगा, और पेड़ की बात सुन के रामू भी रोने लगा, और उसे सारे वो दृश्य नजर आए जो उसने, पेड़ ने जो कुर्बानी दी, वो सारे नज़ारे उसको दिखने लगे। क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, सारे भोग बिलास सारी चीज़ें कर चुका था, और किसी चीज़ से तृप्ति नहीं मिली, लेकिन जो प्रेम था तो जागृत हुआ और दोनों रो पड़ते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी तीसरी कक्षा में सुनी थी कभी। तो अचानक एक दिन ऐसे बैठे हुए अचानक याद आया कि हमने भी कोई बचपन में तत्वों से जो कुर्बानी दी है उनने, कोई कहानियाँ ऐसी सुनी हैं, और वो हमारे माइंड में कैसे अभी तक विचरण कर रही हैं। हर एक जैसे कंप्यूटर में हर एक फोल्डर होता है, जिस समय जिस फोल्डर की जरूरत होती है हम ओपन कर लेते हैं और उससे वो मटेरियल ले लेते हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में सारा स्टोरेज है। इधर तो जो बाहर तो मेमोरी की जरूरत होती है, हमारी मेमोरी इनफिनाइट है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी उसको यूज़ करोगे उतनी बढ़ जाएगी। इधर तो बढ़ाने के लिए स्थूल चाहिए, 2 GB का मेमोरी कार्ड है, उसको 8 GB नहीं कर सकते आप, बदलना पड़ेगा। लेकिन इधर हमारे अंदर जो मेमोरी है उसको बहुत एक्सपांड कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो है आई लव 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से प्यार। जबकि बाबा ने 5 तत्वों के लिए क्या कहा, दुनिया वालों ने क्या कहा, इतिहास क्या है, त्रिकालदर्शी हो कि हम उसके बारे में जानेंगे। तो आज उसी अवस्था में स्थित होकर बैठना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्र बरन्निबोधत। उपनिषद का ये स्लोगन स्वामी विवेकानंद ने कभी इसको इसी स्लोगन के जब उपनिषद का ये स्लोगन पढ़ा, उनके जीवन में आत्मक्रांति आ गई। उठो जागो, कब तक भागते रहो, जब तक अपने लक्ष्य को न पालो तब तक भागते रहना है। भागने में भी 2 चीजें होती हैं, एक दिशा की तरफ ले जाता है और एक दुर्दशा कर देता है। 5 तत्वों से प्यार के लिए आगे पीछे सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो बाबा ने क्या कहा और दुनिया वालों ने क्या कहा, उस पे चर्चा करेंगे। और प्यार कैसे बढ़ाना है, प्यार कितना लिमिटेड, हमारा कितनी क्षमता तक अभी है भी या नहीं है, या 5 तत्वों को ही भूले हुए हैं। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कई गुणों में कि कई जो उनके अंदर गुण हैं वो भूल जाते हैं, दूसरे को पाने के चक्कर में जो अंदर उनके अंदर शक्तियां समाई हुई हैं उनको भूल जाते हैं, और उन शक्तियों को पाने के चक्कर में ना माया मिली ना मिला राम, ये हो जाता है। तो पहले आप लोग बताएंगे प्रकृति से प्यार कैसे करें, और प्यार है कि नहीं, अभी कितने लेवल तक है वो कैसे पता करें, तो मेजरमेंट क्या है उसका, ना सारी चीजें देखेंगे। प्रकृति को सुनना पड़ेगा, सुशील भाई कह रहे हैं कि प्रकृति को सुनना पड़ेगा। अरविंद भाई कह रहे हैं मिस यूज नहीं करना। हाँ और प्रकृति में जाके सो जाओ, सुख सोचना है, सुनना है। और विट्ठल भाई लेना है, प्रकृति से लेना है, 5000 वर्ष से लेते ही तो आ रहे हैं, दी देने का तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ और क्या करना है राम भाई, लेना है कि देना है? तो बाबा ने तो दो अर्थ बताए ना, एक प्रकृति मानव पांच तत्वों से बना शरीर और एक प्रकृति वो जो है। और बाबा ने क्या प्रकृति की कैसे जितने भी मुरलियों में आप एग्जांपल देखो सारे प्रकृति, ऐसी कोई मुरली भी नहीं रहेगी किसी भी दिन की जिसे मैं प्रकृति से न जुड़ा हूं। पांच तत्वों को पावन बनाना है, सेवा करनी है प्रकृति से, वास्तव में प्यार मतलब प्योरिटी से प्यार, जिसको पवित्रता से बहुत प्यार है वो ऑटोमेटिक प्रकृति की सेवा कर रहा है, पांचों तत्व की सेवा ऑटोमेटिक हो रही है, उसमें सोचना भी नहीं। वास्तव में ये भाव भी रखना कि मैं उसको दे रहा हूं प्रकृति को, ये भी सूक्ष्म में अहंकार है और ये अहंकार को जन्म देता है। सोचो प्रकृति कितनी सारी शिक्षाएं दी है, दुनिया में साइंटिस्ट हुए बड़े बड़े, किसी को पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी के ऊपर एप्पल गिर गया तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई। महात्मा बुद्ध को ऐसे ही कहते हैं कि जहां सेंटर था भवरताल गार्डन उसका नाम है, उसके नीचे एक पेड़ है, आज उस पेड़ के नीचे लाखों लोग जाते हैं और उधर पे बहुत सारी तपस्या और साधन सारी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस पेड़ के नीचे। जबलपुर में एक गार्डन है, उधर एक पेड़ है, उधर पे बहुत सारे लोग, उनके फॉलोअर सारे लोग डेली जाते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि जिस पेड़ के नीचे किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी पेड़ के नीचे चल जाया जाए। हाँ वो वाइब्रेशन और वो चीजें मिल सकती हैं, लेकिन भावना ये नहीं कहा जा सकता कि पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति जाए और उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। आपकी भावना कैसी है तो भावना से ही फल। तो प्रकृति को प्यार करने के कितने तरीके हैं वो हम जानेंगे, तो किस किस चीज से प्रकृति से हमारा प्यार बढ़ेगा। हाँ आम खाएंगे तो प्यार बढ़ेगा, उनको थैंक्स दे। बाबा जो कहता है ना कि वाइब्रेशन दो, उनको सकास दो फिर खाओ, है ना? क्योंकि हम कौन है? भोक्ता है। भोक्ता बड़ा या दाता बड़ा? तो दाता कौन? और बाबा एक मूली में कहा कि वो रचना है, तुम रचेता हो। रचना का भाव कहाँ है और रचेता का भाव कहाँ है? हर एक बात में बाबा ने अलग अलग स्पष्टता दी है। सांख्य दर्शन अगर आप देखो तो प्रकृति और पुरुष की कितनी गहराई दी है बाबा, जो प्रकृति और पुरुष की उपमा देता है ना। शरीर क्या है? प्रकृति है, और पुरुष कौन है? आत्मा। अगर इसकी गहराई में चले जाए तो पूरा सांख्य दर्शन इसी पे आधारित है, प्रकृति और पुरुष पे, है ना? अभी जो वेस्टर्न कल्चर में देखें तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांतवादी लोग हुए, लेमार्क बाद हुआ, डार्विन हुआ, है ना? उपरिवर्तक के सिद्धांत दिए, म्यूटेशन थ्योरी है, कितनी सारी चीजें हैं जो उनको परम समझते हैं। डार्विन छोटा था, बचपन में ही निकल गया यात्रा में, नाव में, और 5 साल तक कहते हैं कि वो समुद्री यात्रा करता रहा, और जैव विकास में उसका अपना जीवन समर्पण कर दिया। इतना उसको ऐसा नहीं कि पहले से उसको प्यार रहा हो, ऐसा कहानी में सच है या गलत है ये तो नहीं पता, कि वो उदास या मायूस था तो घर छोड़ के भाग गया था, है ना, लेकिन घूमते घूमते ऐसा कैसा प्रकृति से उसको प्यार हो गया कि वो 20 साल अपने जीवन के कई सिद्धांत खोज डाले, अलग अलग जीव जंतुओं से उसने जीव जंतुओं के पास गया। उस समय तो जी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कैसे वो आज उसके सिद्धांतों पे बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे दवाओं जो कहो मेडिसिन कहो, बहुत सारी मेडिकल में भी बुकें हैं जो उन सिद्धांतों को फॉलो करती हैं, दवाएं जो हैं उनका बहुत निर्माण होता है, बहुत बड़े बड़े उद्योग लग गए उस समय। मतलब भाव कितना ऊंचा था कि विश्व में परिवर्तन आ गया। तो वो तो उन सब बातों में तो हमें चिंतन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली में ना जो सारे होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, सिर्फ सार रूप में बाबा सुना देता है। भले 4 पेज की 2500 शब्द हैं उसमें, लेकिन हर एक शब्द एक से बढ़कर एक है। अगर किसी एक शब्द की गहराई में ही चला जाए तो उससे निकलना ही नामुमकिन हो जाता है। तो इतनी गहराई होती है, जब जैसे आज बाबा ने कितने राज खोले, क्या क्या बोला, बॉम्बे तो होगा नहीं, समुद्र को सुखा के बना दिया है, सत्ययुग में बॉम्बे ही नहीं होगा, पहाड़ी भी नहीं होगी, है ना, ना अंत समय सारे आधार छूट जाएंगे, ना हॉस्पिटल होगा, ना डॉक्टर होंगे, ना क्रियाक्रम होगा, क्रियाक्रम भी नहीं होगा। तो अंत समय अभी हम उसको भी देखेंगे, ऐसी 69 से लेके 2017 तक ऐसी 16 व्यक्तवाणियां हैं जिनके बारे में बाबा ने प्रकृति के लिए बहुत गहरे शब्द बोले हैं। शायद वो हमारी पढ़े भी हों तो स्मृति में ना हो, उनको आज रिवाइज भी करेंगे, बाबा ने क्या क्या कहा और किस किस बेस पर कहा। कभी प्रकृति के 5 तत्वों को बाबा ने कहा वो तुम्हारे गुलाम है, कभी कह दिया कि वो तुम्हारे पालन करता है। तो एक प्रश्न है इधर पे, जन्म देने वाला बड़ा है या पालन करने वाला बड़ा है? तो वास्तव में जो हमारा जो मोह से कनेक्शन है ना, वो इर्द गिर्द घूमता है जन्म देने के बाद, जिसने जन्म दिया ना उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जिसने पालना की ना, शायद जन्म देने वाला एक ही जन्म दिया हो उससे एक ही जन्म का रिलेशन हो, लेकिन जो पालना करने वाला उससे हमारा जन्म जन्म का रिलेशन है। वो प्रकृति है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है। तो इसलिए शायद भारत की संस्कृति, भारत का जो दर्शन शास्त्र कहता है भारत माता, माता से रिलेटेड नहीं है कि भारत बस माता है, वो 5 तत्वों को कह रहे हैं वो माता है, क्योंकि उससे हम पल रहे हैं निरंतर। आप जब छोटे थे 1 साल तक 2 साल तक माता का दूध पी के आपने अपने शरीर की पुष्टि की है, लेकिन 5 तत्व तो जन्म से लेकर मरण तक साथ हैं। वो माता तो शायद कुछ समय तक रहे साथ आपके, हर एक तत्व जीव जंतु को देवता क्या भगवान भी मानते हैं लोग, वास्तव प्रकृति को ही भगवान कह दिया, बोले प्रकृति ही सत्य है, भगवान तो दिखता ही नहीं है, प्रकृति तो हमको दिखती है और देती भी है विदाउट एनी टैक्स। इधर लाइट लोगे तो टैक्स पे करो, पानी पी नल का यूज कर रहे तो टैक्स पे कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन का देखो, लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार थे, लेकिन ऑक्सीजन, एक तत्व की व्याधि दुनिया को हिला दी, एक तत्व की व्याधि ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो अरबपति से अरबपति लोग भी परेशान हो गए, न धन काम आया, न वस्तु, न वैभव, न साधन, न कुछ भी। तो बाबा ने अंतिम समय के लिए कहा कि क्या काम आएगा, क्या काम आएगा अंतिम समय, साधन लेस साधना ही काम आएगी, और अंत में सारे पेपर एक साथ आएंगे। अभी तो 1-2 पेपर आए, चलो वायरस है और भी है ना, ऑक्सीजन का है, ये एक ही पेपर है, लेकिन आएंगे तो 5 विकार भी आएंगे, 5 तत्व भी आएंगे, है ना। और क्या आएगा, प्रकृति आएगी, प्रकृति में 25 चीजें हैं। प्रकृति और तत्वों का भी अलग अलग है संबंध, प्रकृति अलग है तत्व अलग है, ये सांख्य दर्शन कहता है। तो उन सब चीजों में तो नहीं जाना विस्तार, तो दुनिया में हर एक चीज में इतना कर दिया गया है कि अगर सूर्य को किसी ने पकड़ लिया तो किसी और चीज को नहीं पकड़ा, सूर्य ही चिकित्सा है, संपूर्ण चिकित्सा है। दुनिया में लोग कहते हैं सूर्य संपूर्ण चिकित्सा है, और फिर मेडिकल फील्ड के अलग अलग झगड़े हैं, इतनी सारी थेरेपी है, विवादित मुद्दा है। किसी बड़े MBBS डॉक्टर ने लिखा है कि हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, एक बुक लिखी है कि हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। हम तो ये सोचते थे कि हॉस्पिटल जाके व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, बच जाता है ना। तो उस व्यक्ति ने उस बुक में इतने सारे संस्करण लिखे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि 12,000 ऐसे केस होते हैं कॉमनली हर हॉस्पिटल में, मतलब सारे मिला के पूरे विश्व भर के, कि 12,000 साल में ऐसे केस हो जाते हैं। कोई डॉक्टर मोबाइल भूल जाता है पेट के अंदर, कोई घड़ी भूल जाता है, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट भूल जाता है, चाकू कैंची सारे, और जब उसको होश आता है तो मरीज एक दो साल बीत जाता है, और फिर निकालता है तो वो मर जाता है। तो गए थे हॉस्पिटल जान बचाने, लेकिन जान खो आए। तो ये कोई विरोध की बात नहीं है ये सारे साधन वो भी घातक हो सकते हैं भविष्य में। तो कई ऐसे योगी हैं जो अपने शरीर के अंदर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं जाने देते। इस कोरोना काल में भी कई ऐसे महान पुरुष या कहो महातपस्वी हुए हैं, और महान लोग भी हुए हैं जो अपने आप को प्राकृतिक पे आधार कर दिया, प्रकृति को सरेंडर कर दिया। नो वैक्सीनेशन, कोई केमिकल हमें अंदर बॉडी में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया है ना। तो वो एक निश्चय का है भाई, अगर आपको निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है तो वो बात अलग है, और नहीं है डोलता है तो वो बात अलग है। हर एक के निश्चय पे बात है, ऐसा नहीं कि ये वैक्सीन नहीं लेना है या लेना है, ये सारी निश्चय की बात है और हमारे बॉडी के उसकी बात है। ड्राई फ्रूट समझ के, हाँ, कुछ नियम जबरदस्ती हैं और कुछ नियम जबरदस्ती बना दिए हैं, कुछ उसमें जाना नहीं है। अगर हमारे पुरुषार्थ में ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, तो ये भी टाइम वेस्ट है। अगर लेना है तो एक संकल्प किया, लिया, बात खत्म की, उसकी ही चर्चा क्यों करते रहना है। लिया, तुमने लिया या नहीं लिया, ये भी वेस्ट है, व्यर्थ फैलाना। भाई तुमने ले लिया ना, बस। किसी ने नहीं लिया तो वो अपना भुगतेगा, वो इसमें वो कोई वो नहीं जान है ना। तो ये है तत्वों की बात। तत्व अभी हम तत्वों से प्यार के लिए हमने जो जो गलतियां करी हैं उन पे हम नजरअंदाज करते हैं। तत्वों से प्यार तो बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ चीजें हमारे जीवन से घटाना पड़ेगा है ना। तत्वों से प्यार अगर बढ़ाना है तो कुछ चीजों को घटाना पड़ेगा। तत्वों से प्यार मतलब परमात्मा से प्यार, क्योंकि परम तत्व वही है सबसे बड़ा। प्रकृतिपति एक उपाधि उसको भी दी है, और तुम मास्टर प्रकृतिपति हो, विश्व कल्याणकारी है ना। तो प्रकृति के साथ हमने कौन सी छेड़छाड़ की है उन पे आज नजर डालेंगे। तो कौन सी छेड़छाड़ की है? पहला तो है भ्रांतियां, हमें भ्रांतियां हो गई कई। हमने संसाधन की खोजों में इतने खो गए, सुख के साधन बनाने में, कि उसी से दुख निर्माण कर दिया बहुत बड़े बड़े। साइंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब चीज़ों की बात करती है ना, उससे ये चीज़ें हुई। लेकिन ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखे नहीं, लेकिन उनको महसूस तक करने के उसमें उसका नाम कर दिया। आज अणु शक्ति है, तो ये दुख का कारण है या सुख का कारण है? बम गोला बारूद बना रहे हैं, इससे सुख होगा या दुख होगा? अभी ज्ञान को थोड़ी किनारे छोड़ के और बाकी उस बात में बात कर, फिर ज्ञान में आएंगे, लास्ट में आएंगे कि बाबा ने क्या कहा उसके लिए, है ना। अभी टाइम अपने पास है 20 मिनट, तो उसमें पहुंचेंगे। पहले तो प्रकृति क्या, ज्ञान में तो बहुत द्वंद भी है, क्या ब्रह्म कुमार को पटाखे फोड़ने चाहिए? हाँ, अगर अभी भी हमको ब्रह्म कुमारी या कहो भगवान का प्राप्त होने के बाद अभी भी दुनियावी सुख, दुनियावी तरीके से हम कुछ कर रहे हैं, तो ये भी प्रकृति के विरुद्ध है, ईश्वरी श्रीमत के विरुद्ध है। नए लोग आए हैं जिनको ज्ञान की इतनी समझ नहीं है, वो छूट है उनके लिए। जो समझ गए आत्मा को, परमात्मा को, प्रकृति को, स्वयं को, स्वयं के भाग्य को, उनके लिए कोई भी छूट नहीं। एक छोटा बच्चा चोरी करता है, उसकी सजा उसको अलग टाइप से मिलती है, और एक बड़ा वयस्क व्यक्ति, एडल्ट पर्सन अगर चोरी करता है तो उसको सजा कैसी है? दोनों की सजा में फर्क है, काम एक ही किया है। दुनिया में अगर कहो कि जो सबसे गंद से गंद काम करने वाला, मतलब एक साधारण व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति भी काम वासना का उपयोग करता है, लेकिन उसे कोई सजा नहीं है ना। लेकिन एक कहो कि वासना में प्रवक्त हो कि एक व्यक्ति ने किसी के साथ गलत किया, तो वो जुर्म कहलाता है, बलात्कार, रेप, तमाम चीजें, तो वो जुर्म कहलाता है, काम वो ही है ना। और एक साधु सन्यासी जो ब्रह्मचारी हो, वो भी वही काम करे, तो तीनों की सजाएं एक सी होंगी या अलग अलग? काम एक ही किया गया हा? इससे ये समझा जा सकता है कि जो जितना जिस चीज को जानता है, अगर वो गलती करे, उसकी सजा उतनी ही भयानक होती। तो बाबा कहता है तुम समझदार बच्चे हो, तुम सबको जानते हो, आदि मध्य अंत को जानते हो, तुमको एक का कितना मिलेगा? पदम गुना मिलेगा। और हम यही शब्द सुन के गदगद हो जाते हैं, 1 रुपए डालो भंडारी में, कितना मिलेगा? माला माल हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी योगी बनने के बाद एक विकर्म किया तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद, सफेद कुर्ता पैजामा बैच धारण करने के बाद प्लस प्लस हो रहा है। हो सकता है कि माइनस भी हो। कभी कभी लगता है किसी व्यक्ति को देख के कि ये तो ऐसा ही है, कुछ कर ही नहीं रहा। और कई कई को देख के ऐसा लगता है महान तपस्वी, महान पुरुषार्थी है। तो इर्द गिर्द हमारी दृष्टि तो 5 ही तत्वों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसमें तो है विस्तार बहुत सारा, किसी एक चीज में टॉपिक से भी तो बाहर नहीं जाना है, वहीं रहना है 5 तत्वों के अंदर ही रहना है। तो भ्रांतियां तमाम चीजें हैं, तो बिजली, सारी चीजों से, प्रकृति से प्यार, सबसे पहले तो पवित्रता से प्यार। बाबा ने यही कहा है कि हमें, हमारा कर्तव्य है स्वयं को, स्वयं की प्रकृति को पावन बनाना, फिर विश्व की प्रकृति को पावन बनाना। अगर स्वयं को पावन बनाएंगे तो स्वराज्याधिकारी कहलाएंगे, और विश्व को पावन बनाएंगे तो विश्व कल्याणकारी, प्रकृतिपति। कितने टाइटल बाबा ने दिए हैं प्रकृति से। तो अभी हम 5 तत्व जो हैं, है ना, 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो बाबा के जो महावाक है मुरलियों के वो रिवाइज करेंगे सब अपनी बुद्धि पे थोड़ा खुदाई करेंगे आज, है ना। तो पहले बाबा ने वायु से रिलेटेड, आकाश वायु से रिलेटेड क्या क्या शब्द बोले सब एक एक बताना है, दो दो कोई नहीं बताएगा। वायु समान हल्के रहो, उड़ते रहो हनुमान की जैसे, नहीं सत्योग की नहीं अभी संगम के, हाँ सत्योग में पहुंचेंगे अभी। वायु को शुद्ध करना है, वाइब्रेशन फैलाना है, वायुमंडल परिवर्तन करना है, और वायु प्रदूषण बहुत है, विकारों की हवा नहीं फैलानी, मुख से खुशबू फैलानी, प्योरिटी की खुशबू फैलानी है, गुणों की, है ना। और आज बाबा ने कहा हार्ट अटैक की बीमारी अच्छी है, हार्ट फेल हो जाओगे तो बैठे बैठे चले जाओगे, हाँ श्वासो श्वास सेवा करेंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, श्वास पूरा शरीर प्योरिफिकेशन हो जाएगा। और बिट्ठल भाई जी वायुमंडल को शुद्ध करना है, दादियों का अनुभव सुनो सुना के, यहाँ धरती पर ऐसे चलना है जैसे मम्मा चलती थी वायु के लिए, वो तो धरती पृथ्वी में आता है, श्वास को अपनी श्वास को देखना है, जागृत रहना है। चलो वायु का अगला बढ़ते आकाश, आकाश के लिए क्या कहा आज, आज की मुरली में ही एक शब्द है आकाश के लिए, आकाश के लिए आग के गोले बरसेंगे, आकाश बेहद है, पुलार ही पुलार, ऐसे बेहद में जाना है। आकाश स्वतंत्र स्थान है जहां पंछी कैसे स्वतंत्र उड़ते हैं, राजपथ है भावा ने कहा, आकाश पुष्पक भगवान का राजपथ है, हाँ सत्योग के लिए कहा है। और आकाशवाणी, हाँ जो महान आत्माओं के शब्द रह जाते हैं वो आकाश में स्थिर, आकाश उसका आकाशीय रिकॉर्ड रखता है। जब देखो कैसे पुरातन काल में देखते थे आकाशवाणी होती थी, आज जो FM का नाम रखा है वो उसी आधार पर रखा है आकाशवाणी ऊपर, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, आकाशवाणी इधर ही समाप्त करते हैं। अब आगे हैं अग्नि तत्व, अग्नि माना क्या क्या कहा, योग अग्नि बाबा ने कहा विकर्मों के भस्म करने के लिए, जैसे वो सूर्य कीटाणुओं को नष्ट कर देता है ऐसे ही तुमको ज्ञान सूर्य बन अपने किन को विकारों को नष्ट करना है। कैसे पांच तत्वों की उपमा लेके बाबा ने ज्ञान को स्पष्ट किया, क्योंकि वो ज्ञान दिखता नहीं आदर्श है। अभी एक शब्द आपसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था, अपनी आंखों के ऊपर नजर रखना है। अब ये कैसा शब्द है, कहाँ मिलेगा ये दुनिया में, तो ऐसे शब्द ही नहीं है, अपनी उसकी अपनी भाषा, अपनी शब्द है, अपना साहित्यकार है वो, है ना। कैसी कैसी अदृश्य भाषा है, अगर वो स्थूल चीजों से न जोड़े तो शायद ही हमारे कपाट में घुस पाए वो बात, वो तो ऊपर से चली जाए। इस ज्ञान को दो प्रकार के लोग आते हैं इस ज्ञान में, एक तर्क से आते हैं और एक भावना से आते हैं। अब प्रश्न ये है कि तर्क वाला सही है या भावना वाला सही है, जो दोनों का बैलेंस रखे क्योंकि भावना भी बहुत जरूरी है। पता चला तर्क तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन वे तो दुनिया में भी लोग हैं तर्कवादी, भावना वाले तो भक्त भी हैं, सारे भक्त क्या ज्ञानी बन सकते हैं, नहीं बन सकते, दोनों का जिनके अंदर बैलेंस हो। फिर अगला तत्व है जल, तो जल के लिए क्या कहा, तुम ज्ञान गंगाएं हो, सागर हो, सागर के बच्चे ज्ञान मास्टर सागर हो, और गहराई में जाना है, सागर में कैसे सब समा लेते हैं सब जीव जंतुओं को, समाने की शक्ति होती है, और चिड़िया बन के सागर को हब कर लेना है, बूंद बूंद धारण करके सागर बनाना है, नदी से मिलना है, हंस जैसे सागर से जैसे सीप से मोती चुनता है वो, ज्ञान की बरसात करनी है, अगर कहीं सूखा पड़ा हो तो बस बैठ जाओ बरसात करने के लिए। और जो बाबा के अच्छे पावरफुल बातें हैं वो सुना, वो बताना, पावरफुल बिल्कुल आग लग जानी चाहिए। ज्ञान स्नान करते रहना चाहिए, मधुबन में आओ और जाके बरसो। अब तो आ ही नहीं पा रहे तो बरसे कैसे, कैसे आना है? मन के विमान से, मन के विमान से आना है, राजपथ से आना है। ऑनलाइन आके ऑनलाइन बरसो, तो ऑनलाइन में तो बाढ़ आ गई ना, अब बरसात की तो छोड़ो। अभी रिसर्च मतलब खुद की है, किसी और की नहीं, कहें तो सबसे ज्यादा यूट्यूब में दुनिया में, विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है ब्रह्मा कुमारीज। करोड़ों वीडियो एक दिन में अपलोड हो रहा है, करोड़ों वीडियो, करोड़ों, क्योंकि 9,000-10,000 आपके सेंटर हैं, डेली की मुरली क्लास तो सारी अपलोड हो रही है ना ये। और कितने ब्रह्म कुमारी आप, खाली टाइम है, यूट्यूब चैनल बन गया सबका अपना अपना, खुद के अनुभव है, खुद का ज्ञान है, खुद का चिंतन बढ़ गया। तो और अब उनने लाखों लोगों ने बनाए तो उनको देख के कई और लाख लोग कॉपी करके बना रहे, तो मल्टीपल कॉपी हो रही, इधर का कॉपी इधर का पेस्ट, और कौन देख रहा है? उधर क्लास कराते समय तो आपको लोग देखते हैं, आप इधर कुछ भी नहीं रख सकते, उधर तो बुक के बुक पर डाल रहे कौन देख रहा है? तो जो बाबा ने कहा ना कि अंत समय साइंस के साधन भी तुम्हारे उसके आधार बनेंगे। आज हम मधुबन नहीं आ पा रहे लेकिन इतना इजी कर दिया, चार धाम आपको 24 आवर दिख रहे हैं घर में बैठे बैठे, ना आपको ट्रेन का खर्चा, टिकट का खर्चा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमारी उधर भावना श्रेष्ठ है तो शायद मधुबन में रहने वाले वो पुरुषार्थ न कर पाए जो उधर रहने वाले कर लें, भावना अगर श्रेष्ठ है तो। और पूरा भाव पे आधारित है, अगर प्रकृति की एक ही पुस्तक थोड़ा 10 पेज की ही कल पढ़ी और ऐसा लगा कि हम तो इतने दिन से कुछ किया ही नहीं, इतने दिन से टॉपिक मिला, इतना समय मिला, इतने दिन से कुछ किया ही नहीं, अगर एक एक शब्द पे अगर गहराई पे जाया जाए तो शायद बोलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जब हम अभी तो समय बहुत कम बचा है, अभी लास्ट तत्व पे आते हैं, पृथ्वी तत्व। आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की, रोड क्या अगर पृथ्वी नहीं होती तो बना पाते? साइंस का भी घमंड बाबा ने कहा, साइंस सुख की साधन भी देता है, घमंड भी है उसको। तो इससे ये भी लगाया जा सकता है कि जिस चीज से हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, उसका अगर हम मूल्य को छोड़ देते हैं, मूल को, तो क्या हो जाता है? अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, और अहंकार ही क्या होता है? विनाश का कारण होता है। भस्मासुर की कहानी अगर देखी जाए तो उसने वरदान शिवजी से प्राप्त लिया किया है ना, लेकिन शिवई शिव की अर्धांगिनी के ऊपर ही नजर डाल ली, पार्वती के ऊपर ही नजर गड़ा ली और शिव के पीछे पड़ गया भस्म करने को, बोले इसको भस्म कर दूंगा, पार्वती को अपना बना लूंगा। तो ऐसा ही भस्मासुर का भी हम तो नहीं बन जाते, भस्मासुर अर्थात किसी चीज के ऊपर मोहित हो जाना, आकर्षण हो जाना। तो बाबा कहीं कहीं कहता है ये प्रकृति तुम्हारी गुलाम है, कभी कभी कहता है दुश्मन है, और कभी कभी कहता है तुम्हारा मित्र है, तुम्हारी पालन करता है। हर शब्द, कभी कभी शब्द भेद ही बहुत सारा मन को उलझा देता है और भ्रांतियां पैदा कर देता है। इसलिए किस काल में कौन सी बात और किस दृश्य में किस अर्थ में कही गई उसका समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, जो वो नहीं, उसकी गहराई में नहीं जाते, जिसके कारण फिर भविष्य में कन्फ्यूजन होती है, तो क्या होता है, उलझ जाते हैं। तो ये हो गए 5 तत्व। अभी बाबा ने जो कहा है, बातें तो बहुत सारी हैं सिद्धांतों की, लेकिन बाबा की बातों पर जाते हैं, जो मूल है, हमारा आधार है, जिसके कारण प्यार, जिसके कारण हमें जीवन श्वास मिली है, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है, क्या है? मुरली, मुरली सेवा, सारी चीजें श्वास हैं, जितने भी लव के बताए, आई लव सेवा, आई लव मुरली, आई लव मम्मा, आई लव ब्रह्मा बाबा, आई लव धारणा, आई लव मर्यादाएं, आई लव आई लव यज्ञ सर्विस, దాది ఫరిస్తా బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీ బ్రహ్మ బాబా తో సమాన హీ హోగా వో సూక్ష్మ వతన్ పరమ ధామ్ ఫరిస్తా తో పాంచ్ తత్వ సే హమారా ప్యార్ తో నేచురల్ హై హై నా ఉస్సే తో హమారా సంబంధ జన్మ జన్మ కా హై ఔర్ వాస్తవ మే హమే మోహ జో లౌకిక కీ తరఫ్ హై నా వో అలౌకిక కర్ దేనా చాహియే ప్రకృతి సే మోహ కర్ దో జితనా లౌకిక ఔర్ సబ్సే జ్యాదా హమ్ తో కహేంగే మోహ నా జో ब्राह्मणों को ज्यादा होता है, दुनियावी दुनिया के लोगों को तो उतना नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो अति मोह में चले जाते हैं। कुमारों को माता से बहुत ज्यादा मोह होता है, कुमारों को ब्रह्मा कुमार बनने के बाद माताओं से मोह हो जाता है, और खासकर दोनों का अगर ज्ञान में है तो और ज्यादा घनिष्ठ। तो कहीं ना कहीं हम उसके ऋणी हैं इसलिए, है ना, लेकिन हम उसके ऋणी ज्यादा हैं या प्रकृति के? अगर हम प्रकृति से माँ की वो करते हैं तो उसकी सेवा ऑटोमेटिक हो रही, अगर आप धरती को सकाश दे रहे हैं तो इसी धरती में वो माँ भी जन्मी है, उसकी सेवा ऑटोमेटिक होगी क्योंकि इस तत्व से वो भी पल रही है। माता की माँ है ये पांच तत्व, माँ की भी माँ है। तो जब हम पावन बनने की एक और परिभाषा है, जब अपनी माँ के आप माँ बन जाओ, लौकिक माँ के भी आप माँ बन जाओ, मात्र पालना उसे देने लगो, और वो एक ही है। महाभारत में उसका एक ही एग्जाम्पल है, कहाँ है, कैसे बनेंगे, माँ का भी माँ बनना एक ही उसका एग्जाम्पल है महाभारत में, और पूरा आधार है वो, और हमारे ब्राह्मण जीवन का भी आधार है वो, और दुनिया गर्त में उसी के कारण गई है। बताओ कौन सा एक एग्जाम्पल है? भीष्म पितामह, जब सत्यवती से उसके पिताजी शांतनु को प्रेम हो जाता है, तब वो जाता है तो उसके पिताजी अस्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो भीष्म प्रतिज्ञा करता है अखंड ब्रह्मचर्य की, है ना, तो सत्यवती सुन लेती है, और जब वो लेके जाता है राजमहल उसको, तो सत्यवती क्या कहती है, रोको रथ को रोको, और जैसे ही रथ रोकता है तो वो देवव्रत नाम रहता है भीष्म पितामह के बाद पहले, तो रोकता है और नीचे उतरता है रथ से, और वो सत्यवती जो होती है वो उसके चरणों में गिर जाती, बोली एक माँ के लिए तुमने एक बच्चा इतनी अखंड प्रतिज्ञा कर ले पवित्रता की, तो एक माँ से भी बड़ा वो हो जाता है। और ये दुनिया में तो हम कहेंगे कि ऐसा माँ के माँ किसी बच्चे के ऊपर झुक जाए ये बहुत बड़ा वो है। पवित्रता जीवन में, पवित्रता अगर हमारे जीवन में धारण हो गई, हमसे सारे व्यक्ति ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कई कई लोगों का अनुभव होगा कि इस ज्ञान में आने के बाद, पवित्रता की धारणा करने के बाद घर छोड़ दिया, वो विरोधी बन गए सारे लोग, लेकिन जब जीवन में परिवर्तन हो गया और जब घर गए तो वो लोग कितनी सेवाएं करना शुरू कर दिए। हर एक दादी का अनुभव है, एग्जाम्पल है पूर्वज आत्माएं, और हाँ कई क्या सारे ब्राह्मण आत्माओं का ये है कि उस शुरुआत में हमें कितने पेपर देने पड़ते हैं, है ना। तो अभी बाबा ने जो कहा उस पे जाते हैं, क्योंकि मनन करते करते भी दूसरा हो जाता है। 16 बातें हैं मूल्यों से जो बाबा ने कहा, जल्दी जल्दी उनको पढ़ेंगे, अपनी जागृत स्थिति में रहना है, क्योंकि हर एक शब्द बहुत गहरा है, शायद ना मिले एक साथ वो कभी। तो पहला नियम है आकर्षण। आकर्षण के लिए बाबा ने क्या कहा, लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम पांच तत्वों को ही पावन करने वाले हैं, परिवर्तन में लाने वाले हैं, वह वायुमंडल के बस कभी हो सकते हैं? जो पांच तत्वों को परिवर्तन करने वाले हैं उनके आकर्षण में फंस सकते हैं क्या? परिवर्तन करने वाले हो ना कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो? प्रकृति के आकर्षण क्या क्या है? सारी आज जो टेक्नोलॉजी है, सारी जो हर एक चीज जुड़ी है उससे, वो साधन है, तो हमें कई चीजें उपयोग बहुत कम करने हैं। डिजिटल जितना उपयोग कम करेंगे प्रकृति से प्यार, लाइट उपयोग कम करेंगे प्रकृति से प्यार, पेपर का उपयोग कम करेंगे प्रकृति से प्यार। कहीं ना कहीं गात हो रही, 1 किलो पेपर 32 लीटर पानी, ट्रांसपोर्ट करोड़ों रुपए का, फैक्ट्रियां, जल प्रदूषण इसका कारण है। बिल्कुल नियमित यूज करना। प्रिंटर, प्रिंटर है उसमें कितनी केमिकल वाली स्याही यूज हो रही है ना, कितनी सारी चीज यूज हो रही है। बर्तन हम धुलाई करते हैं जो उसमें जो केमिकल बनते हैं, प्राकृतिक भोजन भी धीरे धीरे ट्रांसफर होना है, धीरे धीरे उस तरफ भी हमें ट्रांसफर होना है। क्योंकि बर्तन अगर हम सफाई कर रहे हैं तो पानी खर्च हो रहा है, और ज्यादा घिसाई किस बर्तन में करनी पड़ती है, जैसे ही हम प्रोसेस फूड खाते हैं, नूडल्स, चाइनीज, ये सारी ऑयली चीजें हैं, है ना, इसको घिसाई करने में कितनी सफाई लगती है, खाना नहीं है। धीरे धीरे हमारी यात्रा कैसी है, रजो से सतो की जान है ना, सतोगुणी बनना है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। उसमें ये भी नहीं सोचना है ये बाबा ने कब कहा और ये बाबा ने कब कहा। देखो बाबा की प्रारंभिक अवस्था अलग थी, बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा ने स्टार्टिंग में एक, कोई लोग कहते चाय पीते थे, कोई लोग कहते दूध पीते थे, लेकिन अंत समय सारी चीजें छोड़ी, दूध पीते पीते छोड़ा है कि नहीं, चिवन भाई जी छोड़ दिया था। हिंसक है, हिंसा है, क्योंकि हम दूसरे का हक खा रहे हैं। जगदीश भाई ने बहुत सारे दूध के ऊपर बहुत सा गहरे शब्द बोले हैं, किसी के बच्चे का आप छीन के खा रहे हो, है ना। तो बाबा ने प्राकृत पांच विकारों को साधन कहा, एक मूल्य अंग है वो सुनेंगे हम, पांच विकारों से जीत पाना साधारण बात है, लेकिन पांच तत्वों से जीतना ये महीन पुरुषार्थ है। फूल तोड़ना भी तकलीफ देना है। अगर ये प्राचीन काल में प्रथाएं सबके घर में चली होगी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ को भी नहीं हिलाना है, पेड़ को छूना भी नहीं, उसकी पत्तियां सो जाती हैं, कोई भी सांप की पूजा, हर जीव जंतु की पूजा हो रही है, दूध पिला रहे, कुछ कर रहे हैं, किसी आधार पे तो कर रहे हैं ना सारी चीजें। प्रकृति, जब भी हम फसल काटने जाते थे, खुद का अनुभव है कि एक बार हम नारियल भूल गए और ऐसे ही बोल दिया उनको, मजदूर को, कि चलो काटना शुरू करो, इतना डांटा कि सोचो मत, दोबारा तो हम नारियल बगैर आप फसल को हाथ नहीं लगा सकते। गांव में आज भी ये प्रथा है, सोचो कटाई में हाथ नहीं, हम तो काट के चला के भूंज के खा रहे ब्राह्मण बनने के बाद। लौकिक लोग दुनिया में जिनको ज्ञान नहीं ईश्वर का, वो प्रकृति के प्रति इतने वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदार, और हम ब्राह्मण बनने के बाद शायद हमारा अहंकार भी बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने के साथ साथ अहंकार पोषित होता है, क्योंकि मुरली का अध्ययन कम है, गहराई कम है, सिर्फ ऊपर ऊपर पड़ा है। और बाबा ने कहा ऊपर ऊपर तैयार होगे तो क्या मिलेंगी, मछलियां मिलेंगी। दूसरा है सच्चा ब्राह्मण कौन, जो 71 की मुरली थी आकर्षण, और सच्चा ब्राह्मण कौन दूसरा है ना, सच्चा ब्राह्मण कौन है। अब झूठ अपने आप में झांकना है कि मैं सच हूं या झूठ हूं ना। ये धर्मराज की बिल्कुल मुरलियां हैं पूरी तत्वों के प्रति, पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति के बस नहीं होंगे लेकिन प्रकृति को सत्वप्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के बस होंगे। जो अभी प्रकृति को बस नहीं कर सकते, वह भविष्य सत्वप्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। सुख को ना पाने या तक सतयुग की टिकट कैंसिल, भूल जाओ। तो प्रकृति के बस तो नहीं होते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, यह तो ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर रोगों को बचाने, रोगी को बचाने जाए लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। प्रकृति को पावन बनाने वाले और प्रकृति के हम बस में आ जाए, चपेट में आ जाए। अगली है महीन पुरुषार्थ की परिभाषा, तीसरा पॉइंट, महीन पुरुषार्थ। महीन पुरुषार्थ, महीन पुरुषार्थ, जैसे पांच विकारों के बस किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, या पापों को मोटा रूप है, पापों का मोटा रूप है, ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने पांच तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। महीन पाप बनाने के निमित्त, अब ये सोचने का विचार है कि महीन पाप कौन कौन से, धरती पर तेज तेज चलना महीन पाप ये भी है ना, फूल तोड़ना, पत्तियां तोड़ मतलब काटना वृक्षों को, है ना, और भगवान की याद में ना रह के भोजन करना, ये भी पाप है। क्योंकि प्रकृति से हमें मिल रहा, प्रकृति को कौन पोषित कर रहा है, क्या हमारी क्षमता है सूर्य को कुछ देने की, कि हमारी पांच तत्वों को क्षमता है, कुछ हम स्थूल में दे दें, लेकिन वो सारी चीज कर रहे हैं, उसको पोषित करने वाला परमात्मा है और उसका हम स्वीकार कर रहे हैं, है ना, धन्यवाद, बिना धन्यवाद के भाव के, तो वो भी हम पाप कर रहे हैं। इतना हम ब्रह्म भोजन याद में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पाप विकर्म विनाश नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम, कहते तो जरूर हैं, लेकिन बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई कि याद में खाना है, भोजन के ऊपर कितना टेंशन दिलवाया है ना, नहाना भी है तो याद में नहाना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो कर्म विदेही अवस्था में किया जाए वो कर्म अकर्म बन जाता है, और जो देह में स्थित होके ज्ञान प्राप्त करके कोई भी कर्म किया जाए, चाहे माइक का उपयोग भी हम कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो गति कर रहे हैं, लाइट का उपयोग कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, अगर आविष्कार किया उसने स्विच नहीं चालू किया ना, हाँ, तो ये बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं सोचने के लिए, ये तो बहुत गहराई में जा सकते हैं अल्लाह अपने अपने चिंतन से। पुरुषार्थी का ओरा, एक ड्रिल बाबा ने बताई, पुरुषार्थी का ओरा कैसा होना चाहिए, हमें इस पृथ्वी को क्या समझना है, गोल, और आत्मा पूरे शरीर को समझ लो, ये पूरा शरीर लाइट का है, इर्द गिर्द पूरी पृथ्वी लाइट ओरा हो गए, जैसे सूरज के चारों तरफ क्या होता है ओरा, वो बिल्कुल कैसी लाइट होती है सूरज के इर्द गिर्द, वैसे ही ओरा पूरे को समझ लो, हर एक लाइट बैठा है और ये आत्मा है, पूरे शरीर सहित आत्मा समझ लो, लाइट, बस लाइट, तो ये एक ड्रिल हो गई, ये चलते फिरते कर सकते हैं, ये बाबा ने कहा। पांचों प्रकृति को संकोच, संकोच होगा, ये मुरली में बाबा ने कहा है 75 की है कि संकोच होगा, प्रकृति एक फुट आगे तुम्हारे रुक जाएगी, अंत समय एक फुट आगे तुम्हारे रुक जाएगी, बहुत प्रकोप चल रहा, बाढ़ चल रही, भूकंप चल रहा, और उस समय तुम उस सामान में अगर स्थित हो गए तो होगा ऐसा, अगर उन व्यक्तियों को, उन ब्राह्मणों को शायद ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, ऑक्सीजन की समस्या ना आएगी, जिनने वायु को सकाश दिया, सकाश माना क्या, वो तो प्यार ही है ना, पांच तत्वों से प्यार देना उनकी, प्यार में क्या है, प्यार मतलब सेक्रीफाइस, कुर्बानी, हमेशा प्रकृति से कुर्बानी ली है, देना है उसके, देना है कुर्बानी, कुर्बानी क्या करना, उधर तो दाता हो तुम, है ना, तो ये था प्रकृति का विकराल रूप, है ना, ये वर्तमान स्थिति से मिलता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली इसमें, प्रकृति का विकराल रूप क्या है, एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे, किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम में नहीं आएंगे, है ना, और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे, साधन ही समस्या बन जाएगी, समस्या का रूप बनेंगे, ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी, किस बात की आवश्यकता होगी, प्रकृति जब विकराल रूप में होगी, पांचों तत्व अपनी चरम सीमा में होंगी, तो उस समय क्या काम आएगा, प्रैक्टिकल चीज बताओ, प्रकृति पति तो बहुत कठिन शब्द है, निर्भयता चाहिए और एक बाबा की याद है ना, तो बाबा ने अपने अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त बनने के महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप, मास्टर महाकाल स्वरूप रख, ठीक है, आधार रहित स्थिति होनी चाहिए, इसमें मुरली में बाबा ने कहा अणुशक्ति, तत्वों की शक्ति, अणुशक्ति भी साइंस दोस्त भी है, दुश्मन भी बनेगा वो, फिर कहा तत्व योग शक्ति, जब द्वापर से रजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं, यह भी आपकी रचना है, आप सब मास्टर रचयिता हो, वह हद के जंगल को शांत कर देते थे, आप राजयोगी हो, बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन नहीं फैला सकते, पेपर, प्रकृति से पेपर आएगा, दसवीं बात पेपर, पेपर में पांचों तत्व का विकराल रूप होगा, ग्यारहवा सहयोगी, प्रकृति ही सहयोगी है, सहयोगी कैसे है, जो धन व्यवहार लूट के ले गए पुरातन अपने जो सोने की चिड़िया थी, जो वो हुआ, बाबा ने एक राज बोला है कि सारा समुद्री मार्ग से तुम्हारे पास रिटर्न आएगा, हीरे मोती सोने जवाहरात सारे समुद्री मार्ग से वापस आ जाएंगे, सारे भारत
भारत में सारी चीजें आ जाएंगी जो लूटी गई हैं, और उसी से तुम महल निर्माण करोगे। तो ये एक स्वर्ग की स्थापना के एक सूक्ष्म रहस्य है। और भी रहस्य बताए तो दुश्मन दोस्त होगी। आज प्रकृति के पांच तत्वों को लोग दुश्मन मानते हैं, है ना, भूकंप और इन सब चीज। अभी प्रकृति साथ नहीं दे रही है, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं उब गई है, जब अधिक समय हो जाता है तो उब जाते हैं ना, ऐसा ही अब हमें घर जाना है तो हम भी उब गए हैं इस पास इस दुनिया से, वहां की याद आ रही है। पदार्थों की कमी होगी, अंत समय कोई भी पदार्थ जो स्थूल पदार्थों से हमें उपराम होना है इसी उसमें। फिर है भावना, भावना हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। फिर है वायदा, वायदा क्या है, पांच तत्वों से हमें अपने आप को भी पावन बनाना है और पांच तत्वों को भी पावन बनाना है। ये हमने किससे वादा किया है, बाबा से। तो बस ये इसको 16 बातें थी। अच्छा, ओम शांति।